तो मोहम्मद अरबी के इस पैगाम को लेकर हम पारा नंबर 2 शुरू करेंगे। इसमें हम सूरत बकरा की आयत नंबर 142 से 252 करेंगे। अगर आप देख रहे हैं फिगर तो 110 आयतें, 110 आयात सूरत बकरा की इसमें आएंगी। लेकिन उम्मत मुस्लिमा को भूले हुए सबक भी याद आएंगे और बहुत कुछ बाकी चीज़ें पारे के साथ साथ दूंगी। अगर आपने दिल के कानों से इस पारे को सुन लिया तो ना सिर्फ ये है कि मकसद हयात समझ आ जाएगा, बल्कि सिराज मुनीरा और मोहम्मद अरबी उनकी ज़िंदगी किस स्टाइल से गुजरी वो भी समझ आएगा। तो आइए अल्लाह से मदद मांगते हुए इसको शुरू करते हैं। आउसु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम सयकूलु सुफहाउ मिनन्नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم। आयत नंबर 142 से 145। अन करीब नादान लोग कहेंगे कि जिस किबले पर ये थे इससे ने किस चीज़ ने हटाया। आप कह दीजिए कि मशरिक और मगरिब का मालिक अल्लाह ताला ही है, वो जिसे चाहे सीधी राह की हिदायत कर दे। हमने इसी तरह तुम्हें आदिल उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाह हो जाएं। जिस किबले पर तुम पहले से थे इसे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था कि हम जान ले कि रसूल का सच्चा ताबेदार कौन है और कौन है जो अपनी एड़ियों के बल पलट जाता है। वो ये काम मुश्किल है मगर जिन्हें अल्लाह ने हिदायत दी इन पर कोई मुश्किल नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह ताला लोगों के साथ शफकत और मेहरबानी का मामला करने वाला है। हम आपके चेहरे को बार बार आसमान की तरफ उठते हुए देख रहे हैं। अब हम आपको इस किबले की तरफ मुतवज्जो करेंगे जिससे आप खुश हो जाएंगे। आप अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें और आप जहाँ कहीं हों अपना मुंह इसी तरफ फेरा करें। अहले किताब को इस बात के अल्लाह ताला की तरफ से बरहक होने का कतई इल्म है और अल्लाह ताला इन आमाल से गाफिल नहीं जो ये करते हैं। ये था जी शुरू का हिस्सा इस बारे का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्बी कैफियत और किबला तब्दील कर दिया गया। ये है मुकाम सिराजम मुनीरा का अल्लाह की नज़रों में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आदत थी कि जब तक वही ना आती तो पिछली शरीयत ही को फॉलो करते रहते। जब आप मक्का में थे तो खाना काबा सामने था, आप उसी की तरफ रुख करके इबादत करते रहे। हिजरत करके जब मदीना तशरीफ लाए तो आप अगर थोड़ा सा महसूस करें मक्का इधर है, मदीना बीच में, मुल्क शाम आ गया। मदीना में यहूद बसते थे और उस वक़्त तक यहूद जो थे वो बैतुल मक़दस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। जब मक्का में नबी सल्लम नमाज पढ़ते तो आपके सामने मक्का में काबा भी आता और थोड़ा आगे जाएंगे तो बैतुल मक़दस भी आता। इसको मतलब क़िबला तईन कह लीजिए या इस्तक़बाल क़िबला तईन कह लीजिए। अब जब मदीना में आके नमाज पढ़ते तो सवाल जहन में था कि अगर आप मक्का की तरफ मुंह करते तो बैतुल मक़दस की तरफ बैक होती और अगर बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करते तो मक्का की तरफ बैक होती। याद रखिए ये बड़े नाजुक लम्हे होते हैं, ये जो तदरीज है, ये जो एक रुख बदलते हैं। आप एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाते हैं, 2-3 दिन तो सेटलमेंट में गुजर जाते हैं। आप एक घर से दूसरे घर पे जाते हैं, सेटिंग होने में टाइम लगता है। बच्ची कितनी भी मोहब्बतों के साथ जाए, ससुराल जाकर कुछ दिन कुछ महीने मुश्किल होते हैं। ऐसे वक्त में सही फैसले करना, सब्र रखना और तब्दीलियों को कबूल करना, ये पैगाम है इधर। और सिराजम मुनीरा की वो हिकमतें इंशाल्लाह जो ही रमज़ान शुरू होगा तो उसे एक आध दिन पहले हम एक सीरीज शुरू करेंगे وہ آپ اپنے گھروں سے بھی سن لیا کریں گے. اسوۃ العالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 52 اینگل سناؤں گی اور پڑھاؤں گی, اور آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو نوٹ کریں گے. تو جب آپ اس کے ساتھ اس کو نتھی کریں گے تو آج جس چیز کی کمی ہے وہ یہ ہے, آج کے لیڈرز یعنی اسلام کے ساتھ جب آپ مسلمانوں کو جوڑتے ہیں ہر جگہ آپ دیکھیے کہ لیڈرشپ کی کمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حساب سے جو فیصلہ کیا آپ نے بیت المقدس کی طرف منہ کر لیا, تاکہ نئے نئے لوگ ہیں یہاں فتنہ نہ اٹھ جائے, پھر یہود کو ہی تو مائل کرنا تھا. یاد رکھیے آپ کی سنت ہی قائل کرنے سے پہلے مائل کرتے تھے, سمجھ آ گئی؟ کسی چیز کو کنوینس کرنے سے پہلے اس کے لیے اپنی جگہ تو بنائیں. آپ کو انگلی کھبونی ہے, یہ انگلی دیکھیے, آپ کسی سخت جگہ میں اپنی انگلی ڈالیں گے نا تو آپ کی انگلی ٹیڑھی ہو جائے گی, وہ جگہ نہیں ہلے گی. کیا پہلے جگہ کو نرم کرو, سافٹ کرو. جب جگہ نرم ہوتی ہے تو پھر انگلی پوری بھی دھس جائے تو کچھ نہیں ہوتا. آج امت مسلمہ میں دین کا کام کرنے والوں کو اس حکمت کی ضرورت تھی. انگلی نرم نہیں کرنی, قرآن سنت سے نہیں ہٹنا, آپ کے جو عقائد ہیں اس میں ذرا سا بھی جھول نہ آئے. ودو لو تدخنوا فیدخنون والی کیفیات سے لوگوں کو نکال دیں. آپ فرم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. دین جو اللہ کے نبی کے دور میں تھا, ابراہیم کے دور میں تھا, آج بھی وہی ہے, قیامت تک وہی رہے گا. پیغام کو نہیں بدلنا اپنے میں نے, اس میں نہیں کہنا آج کے دور کی باتیں, آج کا حالات, آج کے نظرہ, نو نو نو. قال اللہ وقال رسول, لیکن پہلے ماحول سمجھیے, آپ کہاں کھڑے ہیں, کون لوگ ہیں, مائنڈ سیٹ کے. آج کیوں ہمارے اپنے بچے ہم سے دور ہیں؟ آج ہماری اپنی نسلیں کہتی ہیں پہلے ماں باپ کو پیچھے کریں پھر ہم آپ کی بات سنیں گے, کیونکہ ہم دل نہیں ان کے نرم کرتے. ہمارا انداز گفتگو جو ہے نا وہ دائی والا نہیں رہا, وہ دشمن کے ساتھ بات کرنے والا ہو گیا. تانے دیتے, اٹھو نماز پڑھو, کافر ہو جاؤ گے, فجر اور عصر نہیں پڑھتے تو منافق ہو. بیویاں شوہروں کو اس انداز سے دعوتیں دیں گی, وہ مانیں گے؟ ہم نے ان کو اللہ کی محبت نہیں دی. اللہ اکبر کیا ہے, نہیں بتایا, انی اصغر نہیں بتایا. کہتا اٹھو نماز پڑھو, 7 سال کے ہو گئے, اگر کل نہیں پڑھو گے تو ڈانٹوں گی, 10 سال پہ چھڑی اٹھا لوں گی. معاف کیجئے میری ٹون اچھی نہیں ہے اس وقت, ایسے دین نہیں آئے گا. پھر دو میں سے ایک ہی بات رہ جاتی ہے, یا وہ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں یا دین کو چھوڑ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ سب کچھ کیا, اللہ نے قبلہ تبدیل کر دیا, لیکن دل میں چاہت تو تھی نا, اللہ نے اس کا تذکرہ کیا, چپکے چپکے آسمان پہ دیکھا کرتے تھے کہ اللہ قبلہ بدل دی. اس سے پتہ چلتا ہے نبی نے بھی مانگا تو اللہ سے مانگا, نبی کا بھی اپنا اختیار نہیں تھا. اور پچھلے انبیاء کی کتابوں میں یہ لکھی تھی بات کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. نبی کی خواہش اللہ نے پوری کی. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ پہ کسی کا زور نہیں چلتا. آج انگلش میں ایک بڑا خوبصورت سا جملہ بولتے ہیں, یور وش از مائی آرڈر, یعنی جو آپ کی خواہش ہے میں اس کو حکم سمجھوں گی. اللہ تعالیٰ پہ کسی کا زور نہیں, لیکن نبی کا مقام محسوس کیجئے کہ اللہ نے نبی کے اشارے کو سمجھ کر وہ وقت قریب آ گیا اور خانہ کعبہ تبدیل کرنا تھا. اب یہ ایک بگ چینج تھی, ریئیکشن اٹھنا تھا. اللہ نے وقت سے پہلے یہ آیتیں اتار دی, اور آگے اپنے نبی کو کیا کہا, 145 دیکھیے گا. اور آپ اگر چہلے کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے, اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں, اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں, اور اگر آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے. آئیے ذرا سے ان آیتوں پہ تدبر کرتے ہیں, 142 سے 145. پہلی بات دیکھیے, آج کے دور میں ایک چیز بہت کامن ہے, اور وہ کیا ہے, ہنگامہ آرائی کرنا, چھوٹی بات کو بڑا بنا دینا, فتنے کھڑے کر دینا, سوشل میڈیا, ذرائع ابلاغ, اور اسی طرح کے کچھ ایوننگ نیوز. ان کا کام کیا ہے کہ ایسی رنگ برنگی خبریں پیش کی جائیں تاکہ اس کی وجہ سے ان کا اخبار بکے, اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو وہ معاملہ ہو. ان آیتوں کے شروع میں پہلا جملہ اپنا نوٹ کیجئے گا, کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی بات کو بڑا کرنا, یہ بیوقوفی ہے. اللہ نے سیقول السفخاء میں بتا دیا, بحرانی صورت حال پیدا کرنا اور چھوٹے مسائل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا, یہ منافقین اور کفار کا شیوہ ہے. آپ کا میرا ان آیات پر عمل کیا ہے؟ کہ معاشرے کو ایسا پیغام دیجئے کہ خدا کے لیے ہر بات سن کر آگے مت کیجئے، عقل استعمال کیجئے، شعور استعمال کیجئے۔ آج سوشل میڈیا ایک طاقت بن چکی ہے، آج کی کرنسی ڈیٹا ہے۔ لوگ صرف اپنے یوٹیوب پر ویورز کو بڑھانے کے لیے، اپنے یوٹیوب کو فالو کروانے کے لیے ایسے سنسنی خیز قسم کے تھم نیلز لگاتے ہیں کہ دل چاہے کہ اس کو لے لیجئے۔ تو لکھئے، اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میں چھوٹی بات کو بڑا تو نہیں کرتی؟ بینگ اے وومن، میں اپنی بھی رسپیکٹ کرتی ہوں اور آپ کی بھی، لیکن عورتوں میں ایک بات ہوتی ہے، چھوٹی سی بات پہ کیوس برپا کر دیتی ہیں، پیچھے فون جا رہے ہیں، میاں کو جا رہے ہیں، باپ کو، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ نہیں ہو گیا، تھوڑی سی بات میں ٹھیک ہو گیا، اب یہ ہو گیا، اب وہ ہو گیا۔ اپنے اندر ٹھہراؤ پیدا کیجیے، لہٰذا ایسی چیزوں سے بچیے۔ پھر دوسری بات ہے، کسی ایسے فتنے کی نشاندہی کیجیے جس میں مسلمانوں پر حق واضح نہ ہو سکا، اور اللہ تعالیٰ سے اس میں خیر اور ہدایت کی توفیق مانگیے۔ اگلی بات اس میں ہے نماز کی، نماز میں کوتاہی کرنے والوں میں سے کسی کو نصیحت کیجئے اور اس کو بتائیے کہ اللہ نے ان آیات میں نماز کو ایمان کا ہے، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، تو لہٰذا اپنے ارد گرد کے لوگ جو خاص طور پہ نماز کے عادی نہیں ہیں، ان کو محبت سے نماز کی رغبت دلائیے اور نماز کو بنیاد بنائے، کیونکہ اللہ نے قیامت کے دن نماز کا حساب سب سے پہلے لینا ہے۔ قرآنی رہنمائی دیکھتے ہیں، بے وقوف وہی ہے جو اللہ کے احکامات پہ اعتراض کرے۔ ایک سوال لکھیے، اللہ تعالیٰ زیادہ حکیم ہے یا ہم انسان؟ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہمارے اوپر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہماری زندگی کے ڈے ٹو ڈے جو آپ کے میرے ساتھ ہو رہا ہے، کس کو اولاد دینی، کس کو نہیں، کس کو بیٹا دینا، بیٹی دینی، گھر دینا، دولت دینی، اس پہ بولیے رضیت باللہ ربن۔ اسی طرح شریعت کے جو اللہ تعالیٰ کے نافذ کردہ قوانین ہیں اس کو ماننی ہے۔ تو لکھیے، آپ کے میرے ایمان کا امتحان بھی یہی ہے کہ اللہ کے حکموں کو تسلیم کیا جائے اور اس کے حکم اور فیصلے پہ راضی رہتے ہوئے عمل کریں۔ ہم مانے نہ مانے، جانے نہ جانے، حکمتیں جانے نہ جانے، اللہ تعالیٰ کی بات پہ راضی رہیے۔ اسی طرح جن کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کیجئے۔ لوگوں میں عزت پانے کے لیے اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ پھر غور و فکر کے چند پوائنٹس، عقل مند انسان بے وقوف کے اعتراض کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو 10 دفعہ لکھیے گا۔ ہم اپنی زندگی کا بیشتر وقت لوگوں کو صفائیاں پیش کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ عقل مندی کے آپ پہ کوئی الزام لگاتا ہے؟ چند سیکنڈ کے لیے سوچئے، جائزہ لیجئے، یہ بات سچ ہے تو اس کا شکریہ ادا کیجئے، اصلاح کر لے۔ یہ بات کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوئی ہے؟ اس سے کمیونیکیٹ کر کے غلط فہمی کی اصلاح کر لیجئے۔ جب آپ کو دونوں چیزیں نہ ملے تو پھر سوچیے اس نے کیوں کی۔ اگنورنٹ ہے، تھوڑا سا اس کے قریب ہو کر اس کو اپنے بارے میں بتائیے۔ نہیں ہے، حسد ہے، کوئی اور نیت ہے، کوئی اس کی سوچ کا فرق ہے، تو پھر آپ اپنے کام پہ رہیے۔ یہی اللہ نے آپ کو ان آیات میں سکھا دیا۔ پھر اگلی بات ہے کہ قبلے کی تبدیلی کی خبر پہلے دینا اس لیے تھا کہ ناپسندیدہ چیز کا اچانک سامنے آ جانا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ انجیکشن لگانے سے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں ذرا کیئرفل رہیے گا، ابھی سوئی چبھے گی۔ ویسٹ میں تو مریض کو پوری بیماری بتا دیتے ہیں آپریشن سے پہلے کہ ابھی یہ ہوگا آپ کے ساتھ، کیونکہ وہ ذہن سازی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی اچانک چوٹ بہت زیادہ لگتی ہے، اسی لیے آپ کو اگر اپنی زندگی کے حالات سے کوئی ایسی چیز دکھ رہی ہو نا کہ آگے آنے لیے، تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے چھوٹوں کو ذہنی طور پہ تیار کر دیجئے تاکہ ان کو پہلے سے سنبھلنے کا موقع مل جائے۔ پھر مشرق اور مغرب صرف اللہ ہی کے ہیں، اس لیے آپ اور میں مشرق میں رہیں یا مغرب میں، اللہ کے بن کے رہیے۔ جھگڑا یہ نہیں ہے کہ ایسٹ میں رہیں کہ ویسٹ میں، جھگڑا یہ ہے کہ اللہ کے بن کے رہیے۔ آپ خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں اور اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو نہیں بچیں گے، اور آپ کسی مشرق قوم کے بیچ میں کھڑے توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اس میں امت وسط کی بات ہے، اس سے مراد کامل شریعت اور سب سے اچھے مذہب والی امت ہے۔ یہ ہے بھولا ہوا سبق، کیونکہ ہمیں سے اکثر کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ نیکی کا ایک ہی معیار ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صوم و صلات کی پابند بچی چاہیے رشتے کے لیے، مرد کی داڑھی، عورت کا نقاب ہمارے لیے کافی ہے دیندار ہونے کے لیے۔ حالانکہ یہ سب بیچ رستہ ہے، یہ ٹولز ہیں، इन सारे टूल्स के जरिए एक किरदार खड़ा किया जाता है। नमाज खुशू सिखाती है, ज़कात शेयरिंग सिखाती है, हज यूनिटी सिखाता है, और इसी तरह हर रिचुअल के पीछे कोई हिकमत है ताकि एक ऐसी उम्मत बने जो उम्मत वसत का किरदार अदा करे, जो लोगों को अल्लाह से जोड़े। जो रिसालत का काम रुक गया नबी सल्लम के बाद, अब कार्य रिसालत करे। आपको मुझे ये करना है, आपके मेरी ज़िंदगी का मकसद दावत इल्लाह है। दावा करते हैं तो बचेंगे, दुनिया में किसी कोने में बैठ के लोगों को अल्लाह से मिला रहे हैं, आपके लिए वही जगह पाक और पाकीज़ा होगी, आपको वहाँ सुकून मिलेगा। और अगर आप अल्लाह के घर आकर भी दुनिया के बुत सजा कर चले जाते हैं उमरा हज करके, चंद हफ्ते के बाद पानी उतर जाता है। तो लिहाजा नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी ईमान से दूरी का सबब बनती है। नफ्स की ख्वाहिशात के पीछे मत लगिए। मुनकरीन हक की जिद और हठ धर्मी को दूर करना है तो उनके लिए मुस्तकिल दुआ भी करें और कोशिश भी करें, और हक की मार्फत हो जाए। इसके बावजूद अगर आप हक की मुखालफत करेंगे दिल पे मोहर लग जाएगी। तो लिहाजा इन आयात से आपको मुझे दो बातें याद रखनी है। नंबर एक, उम्मत वसत होते हुए अपने आप को उस मुकाम पे लाइए जो मतलूब है, जो ज़िंदगी का स्टाइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, सिराज मुनीरा का था, वही आपका मेरा हो। और लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसके मुताबिक आपको रोल मॉडल बना लें। अल्लाह आपके मेरे लिए आसान कर दे। आगे 146 से 153, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, जिन्हें हमने किताब दी है वो तो इसे ऐसा पहचानते हैं जैसे कोई अपने बच्चों को पहचाने। इनकी एक जमात हक को पहचान कर फिर छुपाती है। नोट कीजिएगा, माँ अपने बच्चे को कदमों से पहचान लेती है, दरवाज़ा खुलने से पहचान लेती, चाबी रखने के अंदाज से पहचानती है छोटा है कि बड़ा, क्योंकि इतने महीने माँ ने पेट में रखा होता है। जितना एक माँ अपने बच्चे को जानती है, यहूद मदीना इससे ज़्यादा नबी सल्लम को जानते थे कि ये सच्चा शख्स है, ये वही है जिसकी खबर हमारी किताबों में दी गई थी। लेकिन क्या किया जाए तासुब का, क्या किया जाए फिरका वारियत का, तेरी मेरी का। कहते थे ये बनी इसराइल से क्यों नहीं आया, बनी इस्माइल से क्यों आया, सगे सौतेले का फ़र्क था। आपके मेरे लिए अमल की बात है, जब हक मिल जाए, किसकी ज़ुबान से मिल रहा है उसको छोड़ दें, अपना भी अगर ना हक बात करे तो उससे बेनियाज हो जाए, क्योंकि अलविला वलबरा अलखुब्बु फिल्ला वलबुग्ज़ु फिल्ला। और अगर गैर से भी सही बात मिलती है ना तो ले लीजिए, यही ये आयतें आपको मुझे सिखा रही हैं। फरमाया आपके रब की तरफ से ये सरासर हक है, खबरदार आप शक करने वालों में से ना हो जाइए। एक जुमला नोट कर लीजिए, दो चीज़ें दीन को बिगाड़ती हैं, एक है शहवात लस्ट और दूसरी है शुबहात, शुबे डाउट्स। डाउट्स का इलाज कुरान पढ़ने में है, इसके तर्जुमे को समझ के। शऊर के साथ सिर्फ कुरान का तर्जुमा भी आप सिखा देना लोगों को तो इंशाअल्लाह ताला उनके दिल खुल जाएंगे। और शहवात का इलाज है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी कुरान पढ़कर डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और नबी सल्लम की सीरत और आपका किरदार देखकर ख्वाहिशात काबू में आती हैं। आज उम्मत मुस्लिमा को इन्हीं दोनों की तरफ पलटने की ज़रूरत है, वरना तो लोग क्या कर रहे हैं उसका इजहार 148, हर शख्स एक ना एक तरफ मुतवज्जे हो रहा है। तुम अपनी नेकियों की तरफ दौड़ो, जहाँ कहीं भी तुम होगे अल्लाह तुम्हें ले आएगा, अल्लाह ताला हर चीज़ पे कादिर है। वलिकुल्लिन विच हुवा मुवल्लीहा, सोचिए फोकल पॉइंट, एक माँ का फोकल पॉइंट उसका न्यू बॉर्न बेबी होता है, दूध पीता बच्चा माँ की सारी तवज्जो ले जाता है। आप अपने आप से पूछिए, मैं भी पूछती हूँ, हमारा रुख किधर है, मेरा दिल किस में लगता है। देखिए जैसे फोन बार बार नहीं उठाते, ये आपका विच है इस वक्त। कुछ लोग खाना पका रहे हैं तो बार बार किचन में घुस जाते हैं, कुछ कपड़े खरीदने लेने देने में। अल्लाह कहते हैं कि वली कुल्लिन विजहतुन हुवा मुअल्लीहा, हर एक अपने विच की तरफ जाते हैं। तुम क्या करो, फस्तबिकुल खैरात, तुम खैरात की तरफ बढ़ो, तुम नेकी को अपना फोकल पॉइंट बनाओ, नेकियों में जल्दी करो। इसको नोट कीजिएगा, आपने मैंने अपनी जिंदगी में भाग दौड़ किस चीज की करनी है ताकि हम नेकियां कर सकें। आप जहां से निकले अपना चेहरा नमाज के लिए मस्जिद हराम की तरफ कर लिया करें, यही हक है आपके रब की तरफ से। और जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अल्लाह बेखबर नहीं। और जिस जगह से आप निकले अपना मुंह मस्जिद हराम की तरफ फेर लें, जहां कहीं तुम हो अपने चेहरे इसी की तरफ किया करो, ताकि लोगों की कोई हुज्जत तुम पर बाकी न रह जाए, सिवाय इन लोगों के जिन्होंने इनमें से जुल्म किया है। तुम इनसे ना डरो, सिर्फ मुझ ही से डरो, ताकि मैं अपनी नेमत तुम पर पूरी करूं, और इसलिए भी कि तुम राह रास्त पाओ। नोट कीजिएगा, लोगों का डर अल्लाह की इताअत का शौक छीन लेता है। अपनी जिंदगी का ये गोल बनाइए, मैंने सिर्फ अल्लाह से डरना है, लोगों से नहीं डरना। जिस तरह हमने तुम ही में से रसूल भेजा जो हमारी आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करता है और तुम्हें पाक करता है और तुम्हें किताबो हिकमत और वो चीज़ें सिखाता है जिससे तुम बेइल्म थे, इसलिए तुम मेरा जिक्र करो, मैं भी तुम्हें याद करूँगा, मेरी शुक्रगुजारी करो और नाशुक्री से बचो। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरू ली वला तकफुरून या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्री वस्सलाह इन्नल्लाह मा साबिरीन। ए ईमान वालो, सब्र और नमाज के जरिए से मदद तलब करो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों का साथ देता है। क्या खूबसूरत आयते हैं, 146 153, कितना कुछ इसमें आ गया। पहली बात तो है फस्तबिकुल खैरात, हर छोटी बड़ी नेकी को आगे बढ़कर करना है। दौड़ लगा दीजिए, नेकियों में भागिए, ज्यादा से ज्यादा नेकी कीजिए। नमाज की पहली सफ में जाने के लिए जल्दी कीजिए, आयतों पे अमल है। सदका करने वाले आप पहले फर्द बन जाइए, आज सबसे पहले कुरान पढ़ने वाले बन जाइए, क्लास में सबसे पहले आने वाले बन जाइए, सबसे आखिर में यहाँ सब ठीक करके निकलने वाले बन जाइए। हम क्यों मीडियोकर रहते हैं, हम बीच की राह क्यों रहते हैं? सेल लगी होती है तो लोग भागते हैं, नेकियों की सेल की तरफ हम क्यों नहीं भागते? छोटी छोटी चीज़ें हमें रुकावट डाल देती हैं, छोटे छोटे इश्यूज बन जाते हैं। मैंने लोगों को रातों को देखा, सफ़र करते हुए शादियों में जाते हैं, चार चार घंटे बैठते हैं, हर 5-5 हज़ार का पेट्रोल जलाकर एक एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। तुम नेकियों के नाम पे क्यों इतना सोचने लग जाते हो? अपने आप को देखो, और अब भी जितनी ज़कात व इल्म व हिकमा, अल्लाह मेरी पाकीज़गी इल्म और हिकमत और दानाई में इजाफा करें, ये दुआ मांगे। और अब भी जितनी इल्मा मांगे, क्योंकि अल्लाह के नबी के काम ये इस पारे की वायद जिसमें आप सिराज मुनीरा को देखेंगे। पिछले पारे में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बाना वबस फीम रसूला मिनहुम, अल्लाह कहते कमार सलना फीकुम रसूलन, लो तुम्हारी मांगी हुई दुआएं आ गई। और नबी कर क्या रहा है, युजक्की कुम अयुअल्लिमु कुमुल किताब वल हिकमा वयुअल्लिमु कुम मालम तकुनु तालमुन। आप और मैं, क्या अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ऐसा प्यारा उस्ताद दिया कि जो हमारा तज़किया करता है, जो हमें किताब सिखाता है, जो हमें हिकमत यानी सीरत सिखाता है, हदीस सिखाता है, और हमें वो सिखाता है जो हमें नहीं मिलता। इस शऊर से अपने उस्तादों के लिए दुआ मांगें, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आइमाए कराम के लिए, मुहद्दिसीने कराम के लिए, सहाबाए कराम के लिए, और सबसे बढ़कर उस्तादों के उस्ताद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अपने प्यारे नबी का हक अदा करने की तौफीक दे, जिन्होंने इतना प्यारा दीन हम तक पहुँचाया। ज़रा सोचिए, अभी जो आज शुरू में पढ़ा है मोहम्मद अरबी में, अगर वही शिर्क के अंधेरे होते और आप और मैं पैदा कर दिए जाते तो क्या बनता? किसने इन अंधेरों में हिदायत के चिराग जलाए? सिराज मुनीरा ने। तो आज के दौर के अंधेरे आप और मैं दूर करेंगे। फस्ता बिल्कुल खैरात, भाग भाग के नेकिया किया करें, नेकी के नाम पे सोचों में ना पड़ जाया करें। वक्त लगता है लगाइए, माल लगता है लगे, स्किल्स लगती हैं लगे, थोड़ी बात चीज़ों को इधर उधर करना पड़ता है करें। नींद छोड़कर आना मुश्किल लगता है, खाना खाना पीना छोड़कर आना जाना हमें मुश्किल लगता है, मगरिब की नमाजें कज़ा हो जाती हैं सिर्फ इसलिए कि हम खाने खा रहे हैं। हर नेकी में आगे बढ़िए, इसी तरह सुबह शाम की दुआएं और नमाज के अज़कार पाबंदी से कीजिए और दूसरों को सिखाएं, क्योंकि फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली, इसमें जिक्र की बात हुई है। याद रखिए, जो नेकी के सबसे कम दर्जे पर इक्तफा करेगा तो उसकी चुस्ती और उसकी फुर्ती कम हो जाएगी, और आजजी और बेबसी और सुस्ती और काहली तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो हमेशा नेक कामों में दूसरों से आगे बढ़ने पर नफ्स को मजबूर करेगा, खैर पर साबित कदम रहेगा और रब के यहाँ उसका मर्तबा बढ़ता जाएगा। फस्तबिकुल खैरात, आप सुबह बिस्तर से ही ना निकले, थोड़ा और सो लो, और सो लो। आप सो रहे हैं कि आपको आराम मिले, आप देखेंगे ज्यादा सोने से सर में दर्द शुरू हो जाएगी। 12 बजे तक जो बिस्तर नहीं छोड़ेगा ना, उसका बाकी पूरा दिन सुस्ती में गुजरेगा। और अगर आप फजर के वक्त तड़के तड़के उठ जाते हैं, फितरत के साथ मैच करते हैं, सूरज चढ़ते ही उठें, आप काम शुरू कर लें, थोड़ा सा खा पी लें, नींद भाग जाती है, शुगर लेवल ठीक होता है, आपका सारा दिन जोश में। अक्सर लोग पूछते हैं आप एनर्जेटिक कैसे रहते हैं, हम आप लोगों को देखते हैं आप बहुत खुश हैं, आपके एडमिन्स बड़े एक्टिव हैं, आप हैं ये वो हैं, तो उसका इलाज भी है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना और करने को दिल करेगा, और थोड़ा करेंगे तो कम। रोज़ सफाई जो करते हैं वो बड़े भाग भाग के कर लेते हैं, और दिन को हफ्ते में एक बार मासी के नहाने पर करनी पड़े, वो जान पे उनके बनी होती है, तो ज्यादा कीजिए आसान होगा। तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा कर ले, नहीं मैं कहती हूँ ज्यादा करें, ज्यादा करेंगे तो फायदा होगा, मेरी तो कोई तसल्ली नहीं होती इतने थोड़े वक्त में, पीछे तो अभी हमारे पास 20-21 घंटे पड़े हैं, उसमें भी कुछ कर ले। आप कहते हैं हमसे ये नहीं हो रहा, हम वो कैसे करें, नहीं फर्स्ट तबेकुल खैरात, ये दुनिया काम की जगह, कब्र आराम की जगह, नम कनाओ मतिल रोज, वक्त कम है मुकाबला सख्त है। हमारे सलफ सालीन को देखिए, उनकी जिंदगियां क्यों तौहीद का नूर बढ़ाने में लगती थी, क्योंकि काम बहुत बाकी है, वक्त फुर्सत कहाँ, काम अभी बाकी है, दुनिया में भी नूरे तौहीद के इतमाम अभी बाकी है। आपके मेरे चारों तो गंदगी पड़ी और हम सो रहे हो, चैन आता है तो क्या आपको मुझे गंदगी नहीं दिख रही, अखलाक की गंदगी, किरदार की गंदगी, तौहीद और की जगह शिरक है, सुन्नत की जगह बिदत है, और लोग मौजें कर रहे हैं और आप और मैं बैठे हैं, नहीं तो ज़रूरत है इस बात की कि बढ़कर नेकियां करें, ताकि नेकियां करनी आसान हो। और याद रखिए जो रफ्तार हमारी दुनिया में नेकियों की होगी ना, वही सिराते मुस्तकीम पे चलते हुए कल वही जन्नत में पहुंचने की होगी। जो दुनिया में जल्दी जल्दी नेकियां कर रहा है, वो क्यामत के दिन जल्दी से जन्नत में पहुंच जाएगा। तो लिखिए कुरान की रहनुमाई क्या है कि मुसीबतों से निजात का सबसे अच्छा जरिया सब्र और नमाज है। जब कोई तकलीफ आए नमाज, जाए नमाज बिछा ही रहने दिया करें घर में, दो नफिल पढ़ लूँ, अच्छा ज़रा सजदा शुक्र कर लूँ, अच्छा इस्तग़फार कर लूँ, तो गौर व फिक्र के गोशे क्या हैं, फ़स्तबिकुल खैरात, दुनिया में भलाई और नेकियों में सबकत करने वाला आखरत में जन्नत की तरफ बाजी ले जाएगा। मखलूक में सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा उनका होगा जो दुनिया में नेकियों में आगे थे। और इससे पता चलता है कि दीन के तमाम आमाल में फजीलत का पहलू क्या है, काम को वक्त से पहले करना, अव्वल वक्त की नमाज, रोज़ा, हज, उमरा और ज़कात की अदायगी भाग भाग कर कीजिए, जल्दी कीजिए। इसी तरह इबादात में सुन्नतों का अहतमाम कीजिए, आदाब के साथ नमाज पढ़िए, इतनी खूबसूरत आयत है ये। और इससे क्या पता चलता है कि जिस शख्स का दिल नमाज में गैर अल्लाह की तरफ लगा हो, तो उसके बदन का रुख काबा की तरफ हो भी जाए तो फायदा नहीं होगा। वो क्या एक पूरी पोएम है ना लामा इकबाल की, कि जो गया मैं सजदे में तो आवाज आई जमीन से कि झुकता है तू अल्लाह के आगे और दिल तेरा कहीं और है। आज अपने आप से पूछिए, एक सवाल लिखिए, नमाज के दौरान मेरी तवज्जो किधर जाती है, क्या नमाज में मेरा रुख अल्लाह की तरफ होता है। किसी ने कहा कि अल्लाह ने क्या याद आना है नमाज में, मैं तो रुकतें भी नहीं याद आती, हम तो कहीं और खोए होते हैं और नमाजें उल्टी सीधी पढ़ के एक्सरसाइज करके उठ जाते हैं। तो दिल के किबलों को सही कीजिए, और उसके लिए जिक्र जिक्र जिक्र, फज़कुरून यज़कुरकुम वला तशकुरून। आप कहते हैं कि जिक्र की आला तरीन किस्म क्या है, नमाज, क्योंकि नमाज सारी दुआ है, और सबसे बेहतरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्यों, क्योंकि इसके अंदर तौहीद है। और इसके बाद आप देखते हैं तकबीर अल्लाह अकबर, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, फिर अर्रहमान अर्रहीम अल मालिक अल कुद्दूस, अल्लाह की नेमतों को सामने रखते जाइए। तो याद रखिए शुक्र, रिजा और उम्मीद की मजबूती और मोहब्बत, ये तीन चीज़ें जुड़ जाती हैं तो जिक्र जिंदा हो जाता है। अल्लाह आपको मुझे बेहतरीन तरीके से अल्लाह का जिक्र करने वाला बना दे। और कुरान भी जिक्र है, सूरह हिजर में अल्लाह ने फरमाई इन्ना अनज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून। तो कुरान, नमाज, दुआएं, अल करीब को पुकारिए, समी को पुकारिए, अल बसीर को पुकारिए, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद भेजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, اس سے اللہ کے نبی کی محبت بھی دل میں آتی ہے، رحمتیں بھی اترتی ہیں، بلائیں بھی ٹلتی ہیں، پھر اتباع سنت کرنا، نیکی اور تقویٰ پر مضبوطی سے جمنا، توبہ کرنا، جب آپ ان ساری پریکاشنز کے ساتھ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے راستے کھول دیے خیر کے، اور شکر پھر آتا ہے وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر کیا کرو، نہ شکری نہ کیا کرو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃ، کیا پیارا دین ہے آپ کا. دیکھیے جب سے ہم شروع کر چکے ہیں اس سلسلے کو، کوئی ایک شر کی بات آپ کو سکھائی گئی؟ قرآن نے کوئی غلط بات سکھائی آپ کو؟ کوئی آپ کو ایسی بات بتائی جس سے آپ کا تعلق نہیں؟ تو یہ قرآن نہ پڑھ کر، اس کو نہ سمجھ کر، یا اس سے دور رہ کر، یا اس سے دور رکھ کر کون کیا کر رہا ہے؟ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے. کل ریگریٹ ہوگا، کل افسوس ہوگا. زندگی میں ڈے ٹو ڈے مشکلات آتی ہیں، کبھی جذباتی، کبھی روحانی، کبھی جسمانی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاۃ. اور نماز میں جب دل لگنے لگتا ہے نا، تو کسی اور سے زیادہ بات کرنے کو دل ہی نہیں کرتا. اور یہ جو بات ہے نا کہ ان اللہ مع الصابرین، یہ بھی سمجھ لیجیے عقیدے کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ حاضر ناظر ہے، اندر تو باہر تو، غلط ہے. اللہ آسمان پہ ہے، جہاں بھی اللہ کی بات آئے گی اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے رات کو، ویسے اوپر ہے. ہاں اللہ کی ماہیت کیسی ہے؟ السمیع البصیر اور العلیم ہونے کے ناطے سے وہ جانتا ہے آپ کے دل میں کیا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں، وہ سن رہے ہیں آپ کی پکار کو، اور اس کی مدد، اس کی قربت آپ کے ساتھ ہے. کب؟ جب آپ اس کے رستوں میں نکلتے ہیں. جو اللہ کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ میں اور آپ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والے بن جائیں،